नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों और आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह पहल कर्मचारियों के परिवारों को आत्मनिर्भर बनने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने और भविष्य को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का सशक्त संबल प्रदान करेगी। साथ ही श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को लिबरलाइज्ड मेडिकल हेल्थ स्कीम के तहत मेडिकल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए, जिनके माध्यम से उन्हें और उनके परिवारजनों को सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने NDMC परिवार का हिस्सा बने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज, NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका की महिला और बाल कल्याण मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रीलंका के लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश गहरे सभ्यतागत बंधनों, लोकतांत्रिक मूल्यों और अटूट जनसंबंधों से जुड़े हुए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगा और महिला नेतृत्व के माध्यम से गहन सहयोग को प्रेरित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTE की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। प्रश्न पत्रों तक उनकी पहुंच थी। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। CBI ने बताया कि कल गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुणे की अदालत में पेश किया जा रहा है और उन्हें दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सूद ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि एक विकसित होता शिक्षा केंद्र है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री सूद ने कहा कि शिक्षा अवसरों और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से भविष्य की ओर और भविष्य से राष्ट्र निर्माण की ओर, यही प्रगतिशील नई दिल्ली की पहचान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत बैठक कर उनके स्कूलों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों से कहा कि वे वर्चुअल बैठक की कार्यप्रणाली की आदत विकसित करें। उन्होंने वर्चुअल बैठकों के संचालन के लिए प्रोटोकॉल और SOP तैयार करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों को 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस पर विशेष कार्य करने का भी निर्देश दिया। साथ ही श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में AI आधारित लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दे रही है।
सरकार ने अपनी नीति को थोड़ा बदला है, बहुत बड़े विज्ञापन न देकर बच्चों के इनोवेशन के लिए पैसा खर्च करने का काम सरकार ने किया है। NEP 2020 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो एक आग्रह किया गया है, उसके संदर्भ में इन डिजिटल टूल्स का बेस्ट उपयोग करें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं। दिल्ली के कला, संस्कृति और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा आज ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने के लिए EV कार चलाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में मेट्रो मंडे, 2 वर्क फ्रॉम होम और न्यूनतम गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है मेट्रो मंडे और 2 वर्क फ्रॉम होम, न्यूनतम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, और पूरी सरकार इसका पालन कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरी तरह से अगर आप देखें तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं लोग वर्क फ्रॉम होम। मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि मैं दिल्ली के प्रतिष्ठानों से, व्यापारियों से बात करूं, और ज्यादातर लोग अपने संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर रहे हैं।
श्री मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने परामर्श भी जारी किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी सरकारी संसाधनों के उपयोग, ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल वृद्धि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक संतुलित कदम है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये बस सेवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने DMRC को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं। 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली ये बसें सुरक्षा, GPS आधारित ट्रैकिंग और CCTV कैमरे से लैस हैं। इस बस का किराया 10 से 15 रुपए के बीच रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, UPI और नकद भुगतान विकल्पों के माध्यम से यात्री टिकट खरीद सकते हैं। यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह बस सेवा कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्थलों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का अभियान 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह पाए। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण और सामग्री मुद्रण का कार्य 20 जून से 29 जून 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आयोग ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में कुल 1,48,23,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में प्रतीक्षा कक्ष का उद्घाटन भी किया। श्री वाही ने अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने अस्पताल के पार्क में वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए तथा वहां रखे कूलर को साफ करके जनता की सुविधा के लिए इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अस्पताल में 100 बिस्तरों की गहन चिकित्सा इकाई के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज ऑपरेशन मिशन के अंतर्गत आगामी मॉनसून सीजन के चलते अंतर विभागीय बैठक की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में दिल्ली में जलभराव और नालों की सिल्ट सफाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयुक्त ने बताया कि MCD ने मॉनसून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र के नालों की लगभग 65% सिल्ट सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग 4 फीट और उससे अधिक चौड़ाई वाले 1,375 नालों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो दिल्ली के कुल बड़े नालों का लगभग 50% हिस्सा है। श्री खिरवार ने कहा कि मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या को रोकने के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय और बेहतर समझ के साथ काम करना होगा। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश के नागरिकों से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति मित्र बनकर नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। विभाग के सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। विभाग ने विश्वास व्यक्त किया कि आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में ये मजबूत प्रदर्शन व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। देश के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2026 में 34.66% बढ़कर 9 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वर्टिस फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट सक्षम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका के अवसरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर सशक्त बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करना है। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिनभर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।